सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्तिदीप प्रकरण में 240वें श्लोक तक हम लोगों ने विचार किया, 41वां भी हुआ था मेरे ख्याल से। तो 41वें श्लोक में बताया था कि वो चिदाभास कूटस्थ का अनुसरण करता है, किस उद्देश्य से? कूटस्थ बनने के उद्देश्य से। जैसे एक युवराज राजा बनने के उद्देश्य से राजा जो जो कार्य करते हैं प्रजा के प्रति, वही कार्य युवराज भी करता है। क्यों? क्योंकि उनको क्या बनना है? राजा बनना है, इसलिए राजा का वो अनुकरण करता है। इसी प्रकार चिदाभास भी उस कूटस्थ का अनुकरण करता है। वो ये मन उसका एक निश्चय रहता है कि मैं इस कूटस्थ का मैं अनुसरण करूंगा, तो मैं कूटस्थ के रूप में क्या है, एक दिन स्थापित हो जाऊंगा। इस उद्देश्य से क्या वो करता है। मात्र अपने ऊपर जो आरोप लगा है उसको हटाने मात्र के लिए उसका अनुकरण नहीं करता है। उसके दो फल है, एक तो प्रायश्चित के द्वारा क्या है, अशुद्धि समाप्त होना है, और जिसके शरण में जा रहा है चिदाभास, वो चिदाभास कूटस्थ को क्या है प्राप्त कर रहा, मतलब कूटस्थ रूप को प्राप्त हो रहा है, कूटस्थ पदवी को प्राप्त होता है, इसलिए वो करेगा। इस प्रकार से आप लोगों को बताया। आगे कहते हैं 42वें श्लोक में, ननु ब्रह्म ज्ञानेन ब्रह्म भाव प्राप्तौ चिदाभासत्वम एव विनश्येत। एक शंका होती है कि जब ब्रह्म ज्ञान होगा, मैं कूटस्थ हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से जब ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म भाव में जब आएगा, तो चिदाभास रूप जो भाव था वो तो नष्ट हो गया, अर्थात चिदाभासत्व तो नष्ट हो गया। तो लोक व्यवहार में कोई भी व्यक्ति अपने आप को मिटा करके दूसरे भाव को प्राप्त होना चाहता है क्या? नहीं होना चाहता। इसी प्रकार यहां पर भी चिदाभास अपने भाव को मिटा करके कूटस्थ भाव को, ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त करेगा? और यहां तो चिदाभास अपने आप को मिटा करके क्या है, ब्रह्म भाव में जा रहा है, ब्रह्मरूप होने जा रहा है। लोक व्यवहार में तो ऐसा देखा नहीं जाता है कि अपने आप को मिटा करके दूसरी रूप में स्थापित होना, ऐसा देखा नहीं जाता है। ये शंका है, कैसे होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः स्वविनाशाय कथम प्रवृत्त, कोई भी अपने विनाश के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। वो अपने आप को बरकरार रखते हुए दूसरा भाव प्राप्त होता है तो तब कोई बात नहीं है, किंतु अपने आप को विनाश करके दूसरे भाव को प्राप्त कराना, ये किसी के लिए क्या है, उचित लगता नहीं है। अपना विनाश करके दूसरे भाव को कोई भी प्राप्त होना नहीं चाहता है, ये शंका है ऐसी। तो कहते हैं, हम बता देते हैं, हो जाएगा। छोटा पद छोड़ने से यदि बड़ा पद मिलता है तो छोटे पद छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हा? इसी तरह यहां पर भी है, यदि जीव भाव को छोड़ करके यदि आपको बड़ा भाव मिल रहा है तो क्या आपत्ति है, कोई हर्ज नहीं है। अरे 10,000 को उड़ा करके 20,000 मिल जाए तो 10,000 खर्चे में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। यही कहते हैं। अभी देखिए श्लोक में देखिए, देवत्व कामा यज्ञादौ देवत्व कामा यज्ञादौ प्रविशन्ति यथा तथा प्रविशन्ति यथा तथा साक्षित्वेनावशेषाय साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं सवाञ्छति स्वविनाशं सवाञ्छति। एक लौकिक दृष्टांत देता है, देवत्व कामा, जिस व्यक्ति को मुझे देवता बनना है ऐसी इच्छा है, तो देवता बनना है इसके लिए कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तभी देव बनेगा ना। तो मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे देवता बनना है, ऐसा उसके मन में क्या है, इच्छा हो गई और उस इच्छा के अनुसार उसने कर्म किए। अब देवत्व प्राप्ति का समय अब आ गया, मनुष्य शरीर में उसने कर्म किए, स्वर्ग में जाकर मुझे देवता बनना है, उस उद्देश्य से कर्म किया जीवन भर। अब कर्म करने के बाद उस कर्म का फल का अब समय आ गया, मतलब अंतकाल अब आ गया। तो जो सत्कर्म करके देवत्व को प्राप्त होने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करता है, करता है क्या नहीं करता है? चलिए जाने दीजिए, आज तो सती प्रथा नहीं रही, पहले जमाने में जो है वास्तविक जो पतिव्रता स्त्रियां हुआ करती थी। शास्त्र ने जो कहा है कि जो पति के साथ जो पतिव्रता स्त्री जो है जब चली जाती है उसी के साथ अपना भी दहन कर लेती है, तो वो महान लोकों को प्राप्त होती है, उसको महान क्या है, देवत्व प्राप्त होता है। ऐसी उसकी श्रद्धा, ऐसा उसका भाव विश्वास उस समय में था। तो उस अपने पति के शरीर के साथ जीवित शरीर को क्या करती थी, वो अग्नि में प्रवेश करती थी। तो फिर कहेंगे क्या उसको कष्ट नहीं होता था क्या? नहीं, कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका तादात्म्य अपने पति में है, इस शरीर में तादात्म्य नहीं है। ये शरीर के साथ तादात्म्य न होने के कारण उसने तो जैसे ही क्या है, जो चिता की जो है, उस चिता में जब बैठती है वो अपने आप को उस पति में एकाग्र कर लेती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अब वो मन उस शरीर में अब नहीं है, अब कहां है, वो पति में मन है। इसलिए जब चिता जलती है तो उसको कष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि कष्ट होने के लिए मन का होना जरूरी है वहां पर, किंतु अब मन कहां है, पति में। इसी प्रकार अब यहां तो दूसरा दृष्टांत दे रहे, मैंने दूसरा दृष्टांत दिया, तो वहां पर उसको जलने में कोई कष्ट नहीं है, सहज रूप से क्या है, उस शरीर का वो त्याग करती है, क्योंकि उसका तादत में दूसरी जगह होता है। इसी प्रकार यहां कहते हैं देवत्व को प्राप्त करने की इच्छा वाला जो जीव है, चिदाभास है, वो जीवन भर कर्म करता है, उस कर्म का फल देने का समय आता है, उस समय में वो एकाग्र हो जाता है और अग्नि में क्या होता है, प्रवेश करता है। वो लोक व्यवहार में देखा गया है, ईशावास्य उपनिषद में अंत में वो जीवात्मा क्या कहता है, क्रतो स्मर, हे मन अब तू क्या कर, जीवन भर जो तुमने सत्कर्म किए है उसको तू क्या कर, स्मरण कर, याद कर। क्यों? इसको स्मरण करने से ही तुम्हें क्या है, आगे चल करके इससे भी बढ़िया शरीर मिलेगा। तो उस समय मरते समय में क्या है, वो स्मरण करता है, जीवन भर के सत्कर्म को वो स्मरण करता है, इसलिए उसको मरने का कोई दुख नहीं है। उसको ये नहीं वहां पर अनुभव होता है कि मैंने जीवन भर अच्छे ही कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए अब उस अच्छे कर्म का फल तो अब इस शरीर से भी बढ़कर मिलने वाला है, तो इसमें छोड़ने में क्या है समस्या है, कोई दिक्कत नहीं। यदि खराब चीज नष्ट करके यदि अच्छी चीज मिल रही है, खराब चीज की आहुति देने पर यदि अच्छी चीज मिल रही है तो खराब चीज देने में कोई दिक्कत नहीं, वो दे देगा, उसमें कोई कष्ट नहीं है। यही बताया देवत्व कामा ही अज्ञादो प्रविशन्ति यथा, जैसे देवत्व की कामना से कोई सत्कर्मी क्या करता है, अग्नि में प्रवेश करता है, तथा इसी प्रकार साक्षित्वेन अवशेषाय स्वविनाशम सवांछति। इसी प्रकार साक्षित्व भाव को प्राप्त करने की इच्छा से वो क्या करेगा, अपने चिदाभासत्व को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा, अर्थात जीव भाव को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है उस चिदाभास को जीव को, ये जीव जोपन है, ये जीवपन की अपेक्षा कुठस्थपन में लाभ अधिक है। तो जीवपन मिटाने में क्या दिक्कत है, वो सहज रूप से क्या कर देगा, अपने जीवत्वपन को हटा करके कुठस्थपन को लाएगा। टीका देख लीजिए, देवत्व कामा इति यथा लोके देवत्व प्राप्ति कामा मनुष्याः भृगु अग्नि प्रयाग गंगा प्रवेशादो प्रवर्तन्ते। लोक व्यवहार में यह देखा जाता है कि देवत्व की प्राप्ति की इच्छा करने वाला जो मनुष्य है वो क्या करता है, भृगु अग्नि में प्रवेश करता है, अथवा प्रयाग में जाकर के अपना क्या है शरीर त्याग देता है, गंगा जी में जाकर शरीर त्यागता है, अथवा कोई काशी में जाकर के वहां पर अपना प्राण छोड़ता है। क्यों, क्योंकि मैं शरीर में काशी में यदि मैं अपना प्राण छोड़ दूं तो मेरी क्या है मुक्ति है, गंगा में मैं प्रवेश करूं तो ये शरीर क्या है तुच्छ शरीर समाप्त हो जाएगा और मुझे अच्छा शरीर मिलेगा। ये क्या है उसके मन में निर्णय रहता है, ऐसी भावनाएं रहती है, इसलिए त्यागने में कोई समस्या नहीं है, वो मिटा देगा अपने आप को। अपने आप को मिटा करके यदि अपने आप को उच्च भाव मिलता है तो हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। एवं इसी प्रकार कहते हैं कौन, चिदाभास जो साक्षी रूपेण अवस्थान लक्षणस्य, साक्षी रूप से अपने आप को स्थापित करके अधिक फलस्य विद्यमानत्वात्, वो देख रहा है कि मैं यदि साक्षी में स्थापित हो जाऊं, अपने आप को साक्षी में स्थापित करूं तो मुझे चिदाभास की अपेक्षा, जिस अवस्था में मैं चिदाभास रूप में था उस समय में जो फल था उससे कई गुना अनंत फल मुझे क्या है कुठस्थ में स्थापित होने में है। इसलिए क्या करता है, तुच्छ फल को छोड़ करके ऊंचे फल को अनंत फल को प्राप्त करने के लिए अपने जीव भाव को छोड़ करके चिदाभास में कुठस्थ में क्या हो जाता है, वो स्थापित होता है, क्योंकि देख रहा है अधिक फल से विद्यमानत्वात्, उसमें अधिक फल विद्यमान होने के कारण उसको क्या है चिदाभासत्व अपगम हेतु, ये चिदाभास को हटाने में हेतु है, अर्थात अपने आप को मिटाने में हेतु है। जो अभी तक मैं जीव हूं ये जो भाव था, इस भाव को अपने भाव को मिटाने में क्या हेतु है, अधिक फल है। क्या अधिक फल है, कुठस्थ में स्थित होना, ये अधिक फल उसको दिख रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। अपगमे हेतु ब्रह्म ज्ञाने भी प्रवर्तत इति घटते, इसलिए चिदाभास ब्रह्म ज्ञान में प्रवृत्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें हो सकता है। आगे कहते हैं ननु तत्वज्ञानेन आभासत्वम अपगच्छति चेत कथम तत्वविदाम जीवत्व व्यवहार इति आशंक्य। शंका होती है कि तत्वज्ञान होने के बाद आभासत्वम अपगच्छति, अब जीव भाव रहा क्या, जिसको तत्वज्ञान हो गया अब वो अपने आप को मैं जीव हूं ऐसा कहेगा, मानेगा अपने आप को नहीं मानेगा, मतलब क्या हो गया, जीव भाव उसका हट गया। यदि हट जाता है चेत कथम तत्वविदाम जीवत्व व्यवहार, उस ब्रह्मज्ञानी के विषय में, उस ज्ञानी के विषय में ये व्यवहार कैसे होता है, जीवत्व व्यवहार, ये मुक्त जीव है, ऐसा जो व्यवहार है ये कैसा जीव है, मुक्त जीव है। अब उसने जीव भाव को तो हटा दिया, फिर मुक्त जीव है, जीव शब्द क्यों लगा रहे हैं उसके साथ, लगाना नहीं चाहिए ना व्यवहार तो, किंतु ऐसा व्यवहार होता है, ये कैसा जीव है, मुक्त जीव है। अरे आप तो मुक्त जीव है, आपको क्या चिंता, आप मुक्त आत्मा। तो जब चिदाभास हट ही गया, आभास हट गया, जीव हट गया, तत्पर भी उस ज्ञानी के विषय में व्यवहार होता है, ये मुक्त जीव है, ऐसा व्यवहार होता है। तो ये कैसे, जब पूर्ण रूप में हट ही गया जीव भाव, तो फिर जीव शब्द क्यों प्रयोग कर रहे इसके साथ, इति आशंका। तो कहते हैं ये शंका करके उसका समाधान देते, क्या प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंतम तद उपपत्ति, वो प्रारब्ध जब तक है उसका तब तक क्या है उसके साथ है व्यवहार होता रहेगा, क्या ये जीव मुक्त है, ऐसा व्यवहार होता रहेगा उसका प्रारब्ध जब तक है, क्या है जीव दशा का जो प्रारब्ध है तब तक, जब तक ये शरीर है तब तक उसके साथ जीव भाव का व्यवहार होता रहेगा दूसरों के द्वारा अथवा अपने द्वारा, कहेगा अरे मैं तो अब क्या है मुक्त हो गया हूं, किंतु व्यवहार तो चालू है ना, तो व्यवहार क्यों है उसका प्रारब्ध चालू, वो प्रारब्ध है तब तक चलता रहेगा। और दृष्टांत देंगे उसको समझाने के लिए, श्लोक का उच्चारण कर लीजिए, यावद स्वदेह दाहम स यावद स्वदेह दाहम स नरत्वं नैव मुञ्चति नरत्वं नैव मुञ्चति यावदारब्धदेहं स्यान् यावदारब्धदेहं स्यान् नाभासत्वविमोचनम् नाभासत्वविमोचनम् यावत् स्वदेह दाहम न नरत्वम नैव मुंचति। देखिए लोक व्यवहार में अब मर गया व्यक्ति अथवा जिंदा ही है, अब वो जो उसको अग्नि दाह दे रहे हैं, तो जब तक वो शरीर रहेगा तब तक क्या कहेंगे, देखो आदमी जल रहा है, क्या है आदमी जल रहा है। अब आदमी है क्या वहां पर, नहीं है, वो तो डेड बॉडी है, पंचमाभूत है, वो तो वहां मनुष्य अभी नहीं है, पर क्या कह रहे देखो आदमी जल रहा है, कैसा आदमी जलता है, जब तक पूर्ण रूपे न शरीर खाक नहीं होता है तब तक क्या बोलेगा, वो आदमी जल रहा है, ये मनुष्य जल रहा है, जबकि वहां मनुष्य नहीं है, वो मात्र डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर है, वहां मनुष्य नहीं है, तत्पर भी कह रहे कि मनुष्य जल रहा है, और मनुष्य नहीं होते हुए भी। इसी तरह जो जीवन मुक्त पुरुष है वो तो जीवन मुक्त हो गए, अभी चिदाभास तो अभी अपने लिए तो कोई उनको संशय नहीं कि मैं चिदाभास हूं कर गया, नहीं मैं कुठस्थ हूं ये उनको पक्का निश्चय है, मैं कुठस्थ हूं इसमें कोई संशय नहीं, और मैं चिदाभास नहीं हूं इसमें भी कोई संशय नहीं है। तत्पर भी लोगों के द्वारा व्यवहार होता है ये जीवन मुक्त है, क्यों होता है उसका प्रारब्ध शेष है, जैसे वहां जब तक शरीर शेष है तब तक आदमी जल रहा है ऐसा बोला जाता है, और जैसे ही पूर्ण शरीर नष्ट हो जाता है अब नहीं कहते कि ये जल रहा है करके। इसी तरह यहां पर प्रारब्ध जब तक है उसका तब तक उसके साथ व्यवहार होता रहेगा कि ये जीव कैसा है, मुक्त जीव है। यावत् स्वदेह दाहम स नरत्वम नैव मुञ्चति। जब तक वो उसका अपना देह जलता रहेगा, खाक नहीं होगा पूर्ण रूपेण, तब तक स नरत्वम नैव मुञ्चति, अर्थात उसमें मनुष्यत्व का व्यवहार समाप्त नहीं होता, उस मनुष्यत्व व्यवहार को क्या त्यागा नहीं जाता है, न मुञ्चति। इसी प्रकार कहते हैं यावद आरब्ध देहम, इस शरीर को आरब्ध करने वाला जो प्रारब्ध है वो जब तक बना रहेगा, कहते सात न आभासत्वम विमोचनम, जब तक प्रारब्ध है तब तक जो आभास अर्थात चिदाभास अर्थात जीवत्व उसका विमोचन संभव नहीं है, प्रारब्ध है उसका, प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तब नहीं कहा जाएगा कि ये जीव मुक्त है करके। टीका देख लीजिए, यावद इति यथा अग्न्यादो प्रविष्ट पुरुष, जैसे अग्नि में प्रविष्ट हुआ पुरुष दाहादिना स्वधेह नाश पर्यंतम नरत्वम नर व्यवहार योग्यत्वम नैव मुञ्चति। अब नर की जगह अब किसी व्यक्ति का ही नाम ले लीजिए, अरे देखो शर्मा जी जल रहे हैं, वो शर्मा जी चले गए कि तो अभी शर्मा जी के शरीर को जलाया जा रहा है, देखो शर्मा जी जल रहे हैं, कैसे थे अब जल रहे हैं, अब शर्मा जी तो है ही नहीं उसमें, पर तब भी बोल रहे शर्मा जी है, शर्मा जी जल रहे, कब तक बोलेंगे, पूर्ण रूपे में शरीर खाक नहीं होता तब तक बोलते रहेंगे कि शर्मा जी जल रहे। इसी तरह जब तक उसका प्रारब्ध है तब तक ये जीव कैसा है, मुक्त है, ये जीव मुक्त है, ये बड़ा अच्छा जीव है, क्यों, क्योंकि ये मुक्त हो गया है जीव, ऐसा व्यवहार होता रहेगा। स्वदेह नाश पर्यंतम नरत्वम नर व्यवहार योग्यत्वम नैव मुञ्चति, ये मनुष्य जल रहा है, मनुष्य जल रहा है, ये व्यवहार कब तक रहेगा, जब तक वो पूर्ण रूपेण खाक नहीं होता है, वो चलता रहेगा, नैव मुञ्चति। एवं प्रारब्ध कर्म पर्यंतम चिदाभासत्व व्यवहारो न निवर्तत, इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म का क्षय होने तक क्या है, चिदाभास व्यवहार होता रहेगा, अर्थात ये जीव है ऐसा व्यवहार होता रहेगा प्रारब्ध के कारण, बस न निवर्तत इत्यर्थ। ननु भोक्तृत्वादि भ्रमोपादानस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यत्वात् कथं पुनर भोग अनुवृत्ति ही, कहते हैं भोक्तृत्वादि भ्रम, उस भोक्तृत्वादि भ्रम का उपादान कारण कौन, अज्ञान, वो अज्ञान जब निवृत्त ही हो गया है तो फिर दोबारा उसके विषय में पुनर्भोग अनुवृत्ति कैसी, क्या है, भोक्तृत्वादि जो भ्रम था उस भ्रम का कारण उपादान कारण कौन है, अज्ञान, वो अज्ञान तो चला गया फिर दोबारा उसके द्वारा भोग कैसे होता है, अब भोग तो नहीं होना चाहिए, ज्ञान हो गया तो मैं तो अकर्ता हूं अभोक्ता हूं, हा? तो फिर तत्पर भी भोग कैसे हो रहा है, कर्तापन का व्यवहार कैसे हो रहा है, हो रहा है, मैं खा रहा हूं बढ़िया से आनंद ले रहा हूं भोजन का, भोजन का भोग ले रहा हूं, तो ये व्यवहार कैसे हो रहा है, ये कैसे संभव है, जब निवृत्ति हो गया अज्ञान समाप्त हो गया तो भोक्तृत्व भाव समाप्त भोग भी समाप्त, तो ये नहीं होना चाहिए, कथम वा मृत्यु अहम इति, अथवा मैं मर रहा हूं तुम लोग क्या कर रहे हो, ज्ञानी कह रहा है मैं कब से यहां पर मर रहा हूं, भूखा मर रहा हूं और तुम लोग जो है अपना उधर ही बैठे हो, जाओ ले जल्दी ले आओ मेरे लिए भोजन, ज्ञानी कह रहा है मैं मर रहा हूं अभी मैं मरने वाला हूं तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जो करना कर लो मेरे रहते रहते, जैसे मान लीजिए आश्रमी है और ट्रस्टी है और वो मुखिया है महात्मा है, अब वो कह रहा अभी मैं मरने वाला हूं तुम लोगों को जो करना है कर लो जो इस ट्रस्ट आश्रम के बारे में, यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, ऐसा क्यों कह रहा है, व्यवहार हो रहा है, मैं मरने वाला हूं। जबकि वो कैसा है, उसके भीतर का अज्ञान चला गया, अब मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं चिदाभास नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। ये ज्ञान होने के बाद भी इस तरह का जो बात कैसे, वह मृत्यु अहम इति विपरीत प्रतीति, वो कहता है मैं मर रहा हूं, अब मैं मरूंगा। ये जो विपरीत प्रतीति है ज्ञान होने के बावजूद ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, अरे तो मेरा धर्म तो मरना है ही नहीं है, तब भी बोल रहा है मैं मरने वाला हूं, जल्दी करो जो कुछ करना है। ये जो विपरीत जो प्रतीति है, ये जो बात है देखी जाती है, ये कैसे, ये शंका है। इति आशंक्य दृष्टांत प्रदर्शनेन एतत् संभावयति, ये व्यवहार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, ग्रंथकार बोल रहे हैं। एतत् संभावयति, ये संभव है, कैसे, 44वें श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। रज्जु ज्ञाने पि कंपादी, रज्जु ज्ञाने पि कंपादी, शनैरैवोपशाम्यति, शनैरैवोपशाम्यति, पुनर्मन्दांधकारे सा, पुनर्मन्दांधकारे सा, रज्जु क्षिप्तो रगी भवेत्, रज्जु क्षिप्तो रगी भवेत्, रज्जु ज्ञानेपि। जैसे मान लीजिए अचानक ही क्या मंद अंधकार में उसको सर्प का भान हो गया, रस्सी पर ही सर्प का भान हो गया, माने सर्प भासने लगा, उस सर्प भास का परिणाम ये हो गया, उसको पसीना आ रहा है, घबरा रहा है, उसकी जो गति है श्वास की बड़ी हुई है, और अचानक दूसरा आदमी आया, क्यों घबरा रहा है, क्या हो गया, बोले सर्प है इधर, मैंने देखा बहुत बड़ा काला काला सा, दिखाओ चलो, टार से ले आया, दिखाया, अरे तो रस्सी है, अब उसको पता लग गया रस्सी है, परंतु जो धड़कन जो है तेजी की धड़कन, वो एकाएक शांत हो गई क्या, नहीं हुई, कहता देखो आधा घंटे के बाद भी बोलता अभी मेरी धड़कन चल रही है, तेज है, अभी मुझे घबराहट हो रही है, नहीं घबराहट इतनी जल्दी बंद नहीं हुई, ज्ञान हो गया उसको कि ये सर्प नहीं ये रस्सी है, ये ज्ञान होने के बावजूद भी जो उस अज्ञान का परिणाम धड़कन तेज होना, घबराना, कंपन होना, वो बंद नहीं हुआ, वो धीरे धीरे बंद होगा, जैसे ज्ञान होने के बावजूद भी वहां उसका कंपन एकाएक बंद नहीं हुआ, उसका पसीना एकाएक क्या है बंद नहीं हुआ, घबराहट एकाएक बंद नहीं हुई, इसी तरह ज्ञान होने के बाद भी वो व्यवहार करता है क्या, अरे मैं मर रहा हूं, ये जो व्यवहार है ज्ञान होने के बाद भी होगा, क्यों, जो प्रारब्ध है उसका इस व्यवहार का, वो व्यवहार का प्रारब्ध जो है शरीर है तब तक तो होता रहेगा, वो अज्ञान का जो परिणाम, वो परिणाम इतना एकाएक ही झट से समाप्त होने वाला नहीं है, ज्ञान होने के बाद भी, जैसे रसी का ज्ञान होने के बाद भी जो है एकाएक झट से उसका कंपन बंद नहीं हुआ, कंपन बंद होने के लिए कुछ समय लग गया, इसी तरह ज्ञान होने के बाद भी ये जो व्यवहार बंद होने के लिए समय लगेगा। रज्जु ज्ञानेपि कंपादी शनै ही एव उपशाम्यति, रज्जु का ज्ञान होने पर भी जो कंपनादि है वो उस कंपनादि को हटने के लिए थोड़ी देर लगी, धीरे धीरे समाप्त हो गया, ज्ञान भले हो जाए। पुनर्मंद अंधकार ऐसा रज्जु क्षिप्तो रगी भवेत, फिर दोबारा क्या है उसी मंद अंधकार में, फिर दूसरे तीसरे दिन अथवा महीने के बाद जिस रस्सी का बोध हो गया था फिर वो रस्सी भूल गए, और फिर क्या है देखा, फिर क्या हो गया उसको, और भ्रम हो गया, किंतु वो भ्रम ज्यादा देर रहता नहीं, उसको झट से आ जाता, अरे हमने ये पहले रस्सी थी, चार आठ दिन पहले हमने देखा था वही रस्सी, उसको तो उठाया नहीं उसको, फिर उसकी याद आता है, अरे नहीं, चार दिन पहले हमको इसी रस्सी को देख रहे कि क्या है, भ्रम हुआ था। अभी दिख रही सर्प दिख रहा है, किंतु वो मान रहा नहीं सर्प नहीं है, ये रस्सी ही है, वो उसको याद आ जाती है। इसी तरह इस शरीर में क्या है, वो चिदाभास अथवा शरीर के विषय में जो उसका पूर्व भ्रम था वो ज्ञान के द्वारा तो हट गया, किंतु उसका जो परिणाम उसका कार्य चलेगा। जैसे बिजली चली गई, किंतु उस बिजली के कारण जो उसको गति मिल गई थी वो गति एकाएक तो समाप्त नहीं होगी ना, धीरे धीरे समाप्त हो गई, बिजली तो हट गई। इसी प्रकार चिदाभास जो भाव है वो तो हट गया, कि उसका जो कार्य उसके कारण जो हो रहा था वो चीज जो है कुछ देर तक बनी रहेगी। दार्ष्टान्तिके योजयति, इसको अब दृष्टांत में क्या है, दार्ष्टान्त में घटाते हैं। एवमारब्ध भोगोपि एवमारब्ध भोगोपि शनै शाम्यतिनो हटात् शनै शाम्यतिनो हटात् भोगकाले कदाचित्तु भोगकाले कदाचित्तु मर्त्योहमिति भासते मर्त्योहमिति भासते एवं आरब्ध भोगोपि, अर्थात प्रारब्ध का भोग, वो भोग होने के कारण प्रारब्ध का भोग होने पर भी कहते हैं शनै शाम्यति नो हटात, आप हट जबरदस्ती से उसको आप उसको रोक नहीं सकते। आप अपने शरीर की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन है, हमें क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। किंतु हम वो धड़कन कहां रोक सकते हैं? हमें कोई डर नहीं है। अब हमने प्राणायाम शुरू कर दिया, प्राणायाम की धड़कन रोक सकते हैं कि नहीं? थोड़ी क्षण के लिए कम कर सकते हैं उसको, क्योंकि वहां सावधान है, वो तो जानबूझ करके उस धड़कन को कम करने के लिए क्या है वो प्रयास कर रहा है। किंतु जहां प्रयास नहीं कर रहा है, अचानक कुछ हो जाता है, उस समय में उस धड़कन को वो चाहने पर भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि उस धड़कन को बढ़ाने वाला जो काम है वो हो चुका है। अब वो काम क्या करेगा, उस धड़कन को क्या है चलाता रहेगा, जैसे तीर से छोड़ा हुआ बाण जो है अपने लक्ष्य को भेद करके छोड़ेगा। इसी प्रकार जो घबराहट हुई थी वो घबराहट अपना काम कर, जो डर था उस डर ने क्या है अपना काम किया, क्या किया, धड़कन को बढ़ाया उस अज्ञान के कारण। तो वो जब तक रहेगा वो तब तक धड़कन बनी रहेगी, इसीलिए उसको हटात आप एकाएक रोक नहीं सकते, धीरे धीरे अपने आप क्या है रुक जाएगा। शनै ही शाम्यति, धीरे धीरे क्या है शांत हो जाएगा, नो हटात आप हट से उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध भोग है, प्रारब्ध का जो भोग है वो जब तक है तब तक वो चलता रहेगा। किंतु इतना जरूर है, ज्ञान होने के बाद मान लीजिए अभी ज्ञान हो गया तो कुछ दिन तक तो जीव भाव उसका क्या है वो कहता रहेगा, किंतु कालांतर में धीरे धीरे वो भी चीज उसकी कम होती जाएगी। अवस्था जब उसकी बढ़ती जाएगी, ज्ञान में प्रौढ़ता आ जाएगी, जैसे जैसे ज्ञान में प्रौढ़ता आती जाएगी वैसे वैसे जो पूर्व जो कहावत उसकी थी शरीर के बारे में जो बोलता था वो चीजें धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी, फट से एकाएक ही नहीं होगा। जैसे आजकल के जो बड़े बड़े मर्क्यूरी बल्ब हैं, बिजली तो आ गई किंतु पूरा फोकस एकाएक नहीं देता है, वो धीरे 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 फोकस देता है। इसी तरह ज्ञान तो आ गया, किंतु जो पूर्व जो चीजें हैं उन चीजों को क्या है हटाने के लिए समय लग रहा है। जैसे मरकरी बड़ा जो बल्ब है वो अंधकार को धीरे 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 क्या कर रहा है, वो हटा रहा है। बिजली आ गई है अर्थात ज्ञान आ गया उस बल्ब में, किंतु वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपने प्रकाश को बढ़ा रहा है। और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अंधकार दूर होता जा रहा है। इसी तरह ज्ञान तो हो गया हम लोगों को, किंतु हम ज्ञान होने के बाद भी उस ज्ञान का जो कार्य है वो धीरे धीरे क्या है समाप्त होगा। अर्थात जो उस ज्ञान के द्वारा होने वाला कार्य क्या अज्ञान हटाना, अर्थात जो पहले वास्तविक रूप से हम जो जिन बातों को लेकर के चलते थे उन चीजों को हटाने के लिए समय लगेगा। इसलिए किसी को ये नहीं समझना चाहिए अरे हमें ज्ञान तो हो गया तब भी हमारा तो कुछ हटा ही नहीं, शास्त्र ने तो कह दिया ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद कुछ रहता नहीं है। रहता नहीं ये बात सही है, किंतु कब रहता नहीं, धीरे धीरे जाएगा तब बाद में अपने आप सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं रहेगा, समय लगेगा उसको जाने के लिए। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। हम इतने दिनों से तो सुन रहे हैं वेदांत, अभी भी हमको तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ युक्ति से भी समझ गए, कुछ अनुभव हो ही नहीं रहा है, तब भी हमको तो पीड़ा हो रही है, कोई कुछ गालियां तो अपमान लग रहा है। किंतु उसके बाद ये भी तो विचार करेंगे यार ये तो अपमान किसका कर रहा है, शरीर का कर रहा है। मैंने तो सुना है शास्त्र में कि मैं तो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं, और आत्मा का तो ना मान होता है ना अपमान होता है, हाँ न इस आत्मा को भूख लगती ना प्यास लगती है। तो फिर किसी ने मुझे खाने के लिए नहीं दिया तो मुझे इसने भूखा मारा, मुझे इसने भूखा मारा, ये जो व्यवहार है बनेगा नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो जानता है ये तो शरीर का प्रारब्ध है भूखा रहने का, इसलिए उसको मिला नहीं है। मैं तो उसको देखने वाला हूं, ना मैं भूखा रहने वाला हूं, ना मैं प्यासा हूं, ना मेरा अपमान होने वाला है, ना मेरा मान होने वाला है। तो कोई कुछ मेरे विषय इस शरीर को लेकर ही कर रहा है ना, मैं तो शरीर से अलग हूं, तो जो लोग कुछ कर रहा है वो शरीर को लेकर कर रहे हैं। जब शरीर को लेकर करने दीजिए, वो तो शरीर मान रहा है मुझे, किंतु मैं तो देख रहा हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। तो वो चाहे वो कुछ भी करे तत्पर भी क्या उसको फर्क पड़ता नहीं, वो लेता नहीं आपने पर, कोई कुछ भी करे। भगवान बुद्ध जो है भिक्षा के लिए जाते हैं किसी गांव में, उनके साथ शिष्य भी होते हैं। अब वो भिक्षा के लिए जाते तो उसको गालियां मिलती है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, वो शिष्य कह रहे गुरु जी आप कैसे इसी तरह करें, अब वो गाली दे रहा था अभी उन्हीं घरों में जा रहे आप। बोले मैं गाली लू तब तो मुझे लगेगी, गाली वो दे रहा है पर मैं कहां ले रहा हूं, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं। जिसने गाली दी मेरे लिए मैंने तो ली नहीं, तो वापस कहां जाएगी, इसी के पास जाएगी। मैं ले ही नहीं रहा हूं तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो शरीर को देख करके गाली दे रहा है, शरीर तो मैं नहीं ना, मैं तो शरीर से अलग हूं। इसी तरह जब हम सुनते रहते हैं तो बराबर ये ज्ञान हमारा काम करता है प्रसंगानुसार। अरे हम तो इतने दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं, हाँ मेरा ना अपमान होता है ना मैं जलता हूं ना क्या है मरता हूं ना कटता हूं, सब सुना है, रोज सुन रहे। ये जब ज्ञान हम याद करते हैं किसी ने कुछ किया तो उस समय में उतना हमें पीड़ा होती नहीं, क्योंकि ज्ञान हुआ ना कि तो इतना जरूर थोड़ा बहुत तो रहता है, वो भी ज्यादा देर तक नहीं रहे, चलिए कोई बात नहीं हो गया, एक दिन क्या है उसको ध्यान में रखेगा, दूसरे दिन उसको हटा देगा। किंतु जिसको ज्ञान नहीं उसको वो तो हमेशा रखेगा, बार इसने मुझे अपमानित किया है इसका बदला तो मैं ले लूंगा, इसने मुझे भूखा मारा मैं इसको भूखा मारूंगा। परंतु ज्ञानी ऐसा नहीं करेगा, वो बदले की भावना कुछ देखेगा ही नहीं, वो तो ये देखेगा ये तो शरीर का प्रारब्ध है, ये मन का एक अपना प्रारब्ध है, मेरा तो अपना क्या है मैं तो दृष्टा हूं, साक्षी हूं, आत्मरूप हूं, मुझे मात्र देखना है, मुझे देखने के लिए ये देखना ही ये मेरा प्रारब्ध है, ये शरीर का अपमान होना ये देखना मेरा प्रारब्ध था इसलिए मैं देख रहा हूं, मेरा अपमान नहीं मात्र मैं देखने वाला हूं, ये समझ करके क्या है वो शांत रहता है। हटात बलात् उसको हटाने की कोशिश नहीं करता है और ना कभी संभव भी नहीं है, एकाएक आप हटा नहीं सकते उसको। ध्यान की जो गति है, आप एकाएक उसको रोकना चाहोगे? नहीं बोले हमको एकाएक रोकना है, हाथ डालो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना हाथ, अपने आप रुक जाएगा, धीरे 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 उसको देखते रहो, अपने आप रुक जाएगा। भोग काले कदाचित तू मृत्यु अहमिति भासते, वो भोग काल में जब मान लीजिए भोजन कर रहा है, क्या बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है, इस काल में जो है बोलेगा हाँ बढ़िया भोजन है, और प्रसंग आ गए मरने, अभी मरना सन्ना है, अब हम मैं तो चले जाने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, अब जो करना सो कर लीजिए, मेरे से साइन जो करना कर लो, अब मैं मरने वाला हूं। ये जो मरने वाला हूं, ये जो बोल रहा है, उसका भोग काल है, उस ज्ञानी का भोग काल, उस भोग काल में इस तरह का जो बोलना है उसका वो प्रारब्ध है, किंतु उसको वो पता है कि मैं आत्मा हूं ब्रह्म हूं, ये पता है उसको, कि तो बोल रहा है वो उसका भोग है, ये बोल करके चला जाएगा। देखिए ज्ञान जैसे एक पुलिस है, मान लीजिए पुलिस के भीतर मैं पुलिस हूं, ये भी ज्ञान है, और मैं एक कोई शर्मा नाम का आदमी हूं, ये भी ज्ञान है। तो मैं पुलिस हूं, जो बाद वाला जो ज्ञान आ गया, ये ज्ञान पहले वाले ज्ञान को बात कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अथवा बाद वाला आने वाला जो ज्ञान है, मैं पुलिस हूं, ये ज्ञान क्या पहले वाले ज्ञान को हटा रहा है क्या? नहीं हटा रहा है। इसी प्रकार मैं आत्मा हूं, ये जो ज्ञान हो गया, इस ज्ञान से कुछ देर के लिए मैं मर रहा हूं, ये ज्ञान उसके मैं ब्रह्म हूं इस ज्ञान को हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान के लिए उसने पूरी जिंदगी लगाई है, और ये जो मैं मर रहा हूं, ये जो ज्ञान है, ये कोई कमाई हुई चीज नहीं है, तो स्वभाव से आ रहा है, अनादिकाल से आ रहा है, मैं मरने वाला हूं, मैं पैदा होने वाला हूं, ये स्वाभाविक प्राप्त हो गया था। किंतु अस्वाभाविक रूप से मेहनत करके जो हमने मैं ब्रह्म हूं ये जो निर्णय किया है, उसके लिए कितना तप किया हम लोगों ने, तो ये जो तप किया हुआ, तप करके जो प्राप्त हुआ ज्ञान, वो हट सकता है क्या? नहीं हट सकता। जो अपने आप आया वो तो हट जाएगा, किंतु जो हमने जिसके लिए मेहनत की वो हट नहीं सकता। भले बोले किंतु वो ज्ञान अंदर रहता है। एवमिति ननु पुनर मर्त्यत्व बुद्धये तेन तत्वज्ञानं बाध्येत इति आशंका आह। कहते हैं तत्वर ही एक बात है, पुनर्मर्त्यत्व बुद्धि, जब मैं मरने वाला हूं, ये जो बुद्धि होने पर उसका तत्वज्ञान कैसे रहेगा भाई? जिस समय बोल रहा है अब मैं मरने वाला हूं, मैं मर रहा हूं, तो उस समय में एक क्षण में ज्ञान है? एक ही ज्ञान रहेगा, एक क्षण में दो ज्ञान नहीं रहते। तो मैं मर रहा हूं, इस समय में मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान कहां है? है ही नहीं ज्ञान। तो कह रहे तत्व ज्ञान हम बाध्य, तो तत्व ज्ञान बाध हो जाएगा, ये शंका उसका निवारण करते हैं। नैतावता पराधीन, नैतावता पराधीन तत्वज्ञानं विनश्यति, तत्वज्ञानं विनश्यति जीवन मुक्ति व्रतं नेदम्, जीवन मुक्ति व्रतं नेदम् किन्तु वस्तु स्थिति खलु, किन्तु वस्तु स्थिति खलु। चलिए इसके विषय में कल विचार करते हैं। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।